शांति, ओम शांति, ओम शांति। किस जगह बैठे हैं? ये वो ऐतिहासिक स्थान है, नाम ही है हिस्ट्री हॉल। एक इतिहास है इस हॉल के अंदर, आदि पिता ब्रह्मा का, जगदम्बा सरस्वती का, स्वयं ज्योतिपुंज भगवान के अवतार का एक इतिहास इसके कण कण में समाया हुआ है। एक गद्दी राइट साइड पड़ी है, एक लेफ्ट साइड रखी है। वो भी दिन थे जब एक तरफ बाबा विराजमान होते थे और दूसरी तरफ मातेश्वरी जी विराजमान होते थे, जब ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट शिव की वाणी उच्चारण होती थी और गोप गोपियां मुरली की तान पर यहां झूमा करते थे। अब वो यादें इन चित्रों में घूम रही हैं। लेकिन जब भी आकर बैठो, किसी भी जगह यहां बैठ जाओ, वो करंट काम करता है। वो यादें कुछ कुछ बोलती हैं अंदर में, जो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, चारों धाम में से हिस्ट्री हॉल के लिए व्यर्थ संकल्प चलते हो तो हिस्ट्री हॉल में आके बैठ जाओ। यहां भगवान ने इतिहास रचा है तो उसकी यादें इतनी प्रबल हैं, जिन यादों में सब व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की शक्ति है। जो जो भी यहां दिन में लंबा आके बैठते होंगे या अनुभव करते होंगे कि इसके अंदर प्रवेश करना माना व्यर्थ संकल्पों को ताला लग जाना, समर्थ संकल्पों का एक तेज प्रवाह अपने आप चलना शुरू हो जाता है। ये इस जगह के अंदर जादू है। कितना साधारण है लेकिन कितना विशेष है, कितना तीक्ष्ण ऊर्जा है इसके अंदर, उसका आभास आने वाले समय में पूरे संसार को होने वाला है। थोड़े समय में यहां भी वैसी लाइनें लगेंगी कि लोग बस एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे, दूसरे दरवाजे से निकलेंगे। इतनी लाइनें होंगी कि उनको अंदर बैठने तक के लिए भी चांस नहीं मिलेगा। जबकि हम अभी आराम से बैठते हैं, यहां घंटों योग कर सकते हैं। आज भी सूक्ष्म रूप से बाबा से वो मिलन का अनुभव हम यहां पर कर सकते हैं। जब यहां साकार में बाबा थे, उनमें शिव बाबा अवतरित होते थे, तब तो मुझ आत्मा को बाप का परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। शरीर की आयु भी कम थी, लेकिन उसके पश्चात मुझे याद है, इस पांडव भवन की धरती पर हमने कदम रखा था सन 80 में, और मेडिटेशन हॉल में बाबा से मुलाकात हुई थी। पहली बार बाबा के समीप गए, नैनों से नैन मिले, भगवान के मुखारविंद से बहुत विशेष वरदान हमारे लिए निकला, जो आज यादों के अंदर घूमता रहता है। बाबा ने हमसे पूछा था, बच्ची कैसी हो, भगवान हालचाल पूछ रहा था। हमने कहा, बाबा बंधन बहुत है, क्योंकि बहुत कड़े बंधन से निकले थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए हमारा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो। शक्ति को बंधन कैसा, क्योंकि शक्ति तो स्वयं शस्त्रधारी होती है, इसलिए शक्ति को कोई बंधन बांध नहीं सकता। तब हम ज्ञान में बहुत छोटी थी, इस वरदान की गहराई शायद तब नहीं समझ पाई, लेकिन जब हमारे ईश्वरीय जीवन का इतिहास बना तो आज समझ में आता है कि वरदान चला रहा है, वरदान पाल रहा है। दूसरा वरदान हमको प्राप्त हुआ व्यक्त बाप दादा से ओम शांति भवन में। ओम शांति भवन में जब स्टेज पर बाबा के सामने गए, तब हमारे हाथ में बाबा के लिए हमारे हाथों से बनाया गया एक चित्र था, जो नई नई चित्रकला सीख रहे थे। वो चित्र बना था एक हंस के अंदर योगी और ग्लोब के ऊपर वो हंस है, बाबा के मोती चुग रहा है और नीचे समुंदर सागर नीचे छूट गया है, उसमें कमल के अंदर वो बैठा, लहरें आ रही हैं, वो डूब नहीं रहा, तैर रहा है, ऐसा एक चित्र था। तो बाबा के सामने हमने अपने हाथ का बनाया हुआ वो चित्र रखा। उस चित्र को देखते ही बाबा ने फिर से हाथ में हाथ लेकर एक और वरदान दिया, बच्ची तुम्हारी ऐसी ही अवस्था है ना, जितनी न्यारी उतनी प्यारी। तो न्यारा और प्यारा राजयोगी जीवन, ये वरदान बाबा से हमको प्राप्त हुआ। तब से अनायासी महसूस करती हूँ कि कहीं भी किसी भी स्थान पर हूँ, किसी भी कार्य व्यवहार में किसी भी तरह के साथियों के साथ हूँ, कब भी कहीं डूबी नहीं, अटैच नहीं हुई। न्यारे और प्यारे का पार्ट बाबा के वरदान अनुसार इतना अच्छा चल रहा है कि जहां से चली जाऊं वहां की यादें आती नहीं है, प्यार सभी से बहुत ज्यादा है। तो न्यारे प्यारे का वरदान देकर बाबा ने चलाया। तीसरी बार फिर से बाबा से पर्सनल मुलाकात हुई, तब तक भी लौकिक का बंधन बहुत कड़ा था। ज्ञान में चलने की परमिशन तब तक हो गई थी, लेकिन समर्पित होने की परमिशन नहीं थी किसी भी तरह से। तब हम बाबा से मिले तो हमने सफेद साड़ी पहनी थी, हमारे साथ उस सेंटर की कुछ और टीचर्स बहनें भी थी, सबको बाबा वरदान दे रहे थे। मेरा चौथा पांचवा नंबर था, मेरे पर नजर पड़ते ही हमारे सेंटर की दीदी को बाबा बोलते हैं, अच्छा ये भी सेंटर पर रहती है क्या? पहले वालों के लिए कुछ नहीं पूछ, साड़ी उन्होंने भी पहनी है, साड़ी हमने भी पहनी है। तो मैंने उत्तर दिया, नहीं बाबा। फिर बाबा ने बड़ी गहरी दृष्टि देते हुए मुझ आत्मा की जन्म पत्री को पढ़ते हुए फिर महावाक्य उच्चारण किए, अच्छा बच्ची लक्ष्य तो यही है ना? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा के महावाक्य उच्चारित हुए, बच्ची जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ ही जाएंगे और तुम्हारे लक्षणों से दुनिया समझ जाएगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें बहुत हैरानी हुई कि इतने सालों में अभी तक दुनिया तो क्या मेरे माँ बाप ही नहीं समझे, वही छुट्टी नहीं देते है, बहुत कड़ाई से रोकते हैं, और बाबा कह रहे तुम्हारे लक्षणों से वो समझ जाएंगे। और सच में ऐसा हुआ, 6 महीना भी नहीं गुजरा होगा, धीरे धीरे वातावरण हालात ऐसे बनते गए चारों तरफ जो सबके मुख से एक ही आवाज निकलने लगी, इसे रोका नहीं जा सकता। इसे रोका नहीं जा सकता, इसको जाने दो जाने दो। और हालात ऐसे बने कि जितना जटिल पहाड़ जैसी बात दिखती थी वो उतनी सरल हो गई। हम बाबा के यहाँ आ गए, लगता ऐसा था पीछे बहुत बड़े बड़े हंगामे हो जाएंगे, लेकिन वो सब सरल हो गए। तो ये सारी दास्तान क्यों सुना रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि भगवानों वाच में कितनी ताकत होती है। एक एक महावाक्य बाबा का वरदान बन करके कैसे इतिहास बनाता है। बहुत सी बात ऐसी है जो शब्द नहीं बयान कर सकते, लेकिन ओवरऑल देखती हूँ बाबा के वरदान पूरी जन्मपत्री लिख रहे हैं। भाग्य विधाता ने जो मुंह से उच्चारण किया वो भाग्य की रेखा खींच गई। इस सारे से जो सार रूप में बात मुझे समझ में आती है सबके हिसाब से, वो है बाबा के आगे बुद्धि का समर्पण। जो रियल समर्पण है हमारा, मन बुद्धि अर्पण, उसके नंबर इस ईश्वरीय जीवन में सबसे अधिक है, सबसे अधिक। भले कोई कहां रहता हो, लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, दोनों में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि भगवान की बुद्धि के आगे अपनी बुद्धि चलाना बंद किया है या अभी भी चला रहे हैं। क्योंकि बुद्धि तो हम चार युगों से चलाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले दो युगों से माया के प्रभाव के कारण से बुद्धि का अभिमान आ गया है, और उस बुद्धि के अभिमान ने हमको भाषा सिखाई है कि मैं बहुत समझदार हूं, मुझे बहुत कुछ आता है। ये सूक्ष्म रूप में अंदर रिकॉर्डेड है। भले भक्ति के अंदर हम ये भी बोलते रहे, मैं मूर्ख खलगामी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं निर्गुण हारे में को गुण नाई, ये तो सिर्फ जबानी भाषा थी, लेकिन अंदर में गहरा बुद्धि का अभिमान चढ़ा हुआ था। और बाबा जब आते हैं तो पहला ही पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो जितना जितना जिसने अपने पूरे पूर्व ज्ञान को अर्पण किया उतना वो आत्मा हो सका, नहीं तो देह भान बाकी रह जाता है। एक शब्द है मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इतने से देह अभिमान नहीं समाप्त हो जाता है। देह अभिमान की लंबी चौड़ी पंचायत है। देह का नाम, जाति, भाषा, पढ़ाई, संबंध, जाति, गोत्र, नेशनलिटी, लैंग्वेज, शरीर की चमड़ी का रंग, ये फीचर्स, कई तरह का देह भान, लगभग 1000 तरह का देह भान होता है कम से कम, जो चिपका हुआ है आत्मा के साथ, बहुत गहरा जकड़ा हुआ उसने आत्मा को। तो उस सारे का त्याग करने के लिए बुद्धि सरेंडर करनी पड़ती है कि हाँ, इस हिसाब से मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं। उसको फिर अगर कहो आपका कद छोटा है, आपकी नाक छोटी है, आपकी आंख सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो जल्दी फर्क पड़ जाता है, कोई बंगाली और उसको बोल दो सारे बंगाली ऐसे होते हैं, कोई नेगेटिव बात बोल दो तो उसको माइंड हो जाएगा। और अगर ठीक समझा मैं आत्मा हूं तो बंगाली होते ना, मैं तो आत्मा हूं ना। चंडीगढ़ के एक भाई सरदार भाई ज्ञान में चले, ज्ञान में चलने से पहले लिटरली पूरे नास्तिक थे। और जब ज्ञान समझ में आया, अच्छा सा नशा चढ़ा, मधुबन में आए, बाबा से मिलने आए, दूसरी या तीसरी बार आए हुए थे, तो सरदार है, पगड़ी पहनता है, दाढ़ी है, तो अलग वेशभूषा होती है। तो उन्होंने खुद सुनाया कि शांतिवन में मैं एक जगह खड़ा था, तो एक कोई दूसरी स्टेट के भाई मेरे पास आए और ऐसे ध्यान से देखने लगे। पहले तो सिर से पैर तक ध्यान से देख करके बोलते हैं, भाई साहब आप सरदार है ना? कहते मैंने उनको जवाब दिया, नहीं भाई जी मैं सरदार नहीं हूं। उन्होंने फिर पूछा, भाई साहब आप सरदार ही तो है ना, पगड़ी पहनी दाढ़ी लगाई। कहते मैंने फिर मुस्कुरा करके बोला, नहीं मैं सरदार नहीं हूं। उसने तीसरी बार पूछा, दिखते तो आप सरदार है, ऐसे ही तो होते मुझे मालूम है, और फिर भी आप कह रहे आप सरदार नहीं है, तो आप कौन है? तो भाई जी ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, सरदार हूँ नहीं, सरदार था। वो सरदार मर गया, ब्रह्मा कुमार पैदा हो गया। तो देह भान है ये भी, पिछले शरीर का जाति धर्म संबंध। मैं चंडीगढ़ सेंटर पर उतरा दीदी है, उनके माता जी एक बार मधुबन में मिले, किसी माता ने सुनाया, तो दूसरे कोई परिचय करा रहे थे, ये उत्तरा दीदी के माता जी है। तो माता जी बहुत अच्छी साकार बाबा के टाइम की नशे वाली माता है, कहती नहीं मैं उत्तरा दीदी की माता जी हूं नहीं, थी उत्तरा दीदी की माता जी तो मर गई, अब मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, खुद मेरी कोई बच्ची नहीं। ये है आत्मा का पाठ समझना और अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना। बुद्धि के अंदर कई तरह का भान अभिमान रिकॉर्डेड रहता है, वो जब वो सरेंडर किया जाए तब बाबा के आगे समर्पण माना जाए, मैं का समर्पण, मेरे का समर्पण। मैं ट्रांसलेट हो गई थी, आत्मा के बजाय देह हो गई थी, और मेरापन मेरे के नाम पर बाबा ने हमको सिखाया है, मेरा बाबा। तो अनेक तरह का मेरा आ गया था, जिसने हमें अनेक तरह के फेरे में ले आया है। कितना मेरा, मेरा मेरे संबंधी, मेरा धन, मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरी पुरानी आदतें, मेरा सामान, कितने तरह का मेरा मेरा, मेरी इच्छाएं, मेरी पसंदगियां, मेरी चॉइसेस, मेरी पसंद पर भी बुद्धि अटैच हो जाती है कि मुझे नमकीन पसंद है या मुझे मीठा पसंद है, मुझे ये वाला कलर पसंद है, मुझे ऐसे बोलना पसंद है, मुझे ऐसे सोना, ऐसे उठना पसंद है। तो मन चिपका रहता है, उस मेरे से भी मन चिपका रहता है, मेरी इच्छाएं, मेरे संस्कार, मेरी रुचियां, मेरी आदतें। तो बाबा पर समर्पण होना माना मेरी इच्छाओं का भी समर्पण। ये जरूरी बात है, ब्राह्मण बने तो हमने अपनी विकारी इच्छाओं का त्याग किया है, वो भी मोटी मोटी वाली, काम विकार की इच्छाओं का त्याग किया है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छाओं का त्याग किया है, लोभ लालच की इच्छाओं का त्याग किया है। लेकिन सूक्ष्म रूप में बहुत से विकार इच्छाओं के रूप में काम करते रहते, बहुत से विकार, उसका शास्त्रों में यादगार दिखाया है कि कैसे इन इच्छाओं को समाप्त करना है, उसका यादगार दिखाया है रामायण में। मालूम है कौन सा, कौन सा यादगार दिखाया? हनुमान का भी कौन सा? वो तो निरहंकारिता का है, ज्योतियों में बैठ करके कथा सुनता है। इच्छाओं का, इच्छाएं ऐसी चीज है बहुत मीठी माया है। ये जितना इनको संतुष्ट करो बड़ी 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 होती जाती है। सोने का मृग, उसमें मिसाल दिखाया सुरसा राक्षसी, वो इच्छाओं के रूप में दिखाई है। हनुमान दिखाया महाबली, जो हर इच्छा को जिस रूप में चाहे पूरा कर सकता है। उसमें वृतांत दिखाते कि हनुमान ने छलांग लगाई समुद्र पार करने के लिए कि उड़ करके इस पार से उस पार लंका में चला जाए। तो जैसे ही उड़ा समुद्र के ऊपर से, तो उसके अंदर एक राक्षसी रहती थी सुरसा, तो अचानक सामने आकर के प्रकट हो गई। तो हाथ जोड़ करके कहता है, माँ क्या सेवा है, क्या सेवा करूँ। तो राक्षसी थी, भले माँ बोला इसने, कहते मैं भूखी हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान ने बोला कि मुझे खाकर आपकी संतुष्टि हो जाएगी अगर मैं आपके पेट में चला जाऊं। तो सुरसा बोलती, वो भी परीक्षा ले रही थी, हाँ तुम मेरे पेट में चले जाओगे तो मेरी संतुष्टि हो जाएगी। तो हनुमान ने कहा, अच्छा खा लो। अब जैसे ही सुरसा ने खाने के लिए मुंह खोला, हनुमान ने साइज बड़ा कर लिया। अब सुरसा भी मायावी थी, उसने मुंह बड़ा कर लिया, तो एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। सुरसा मुंह और बड़ा करती थी, हनुमान साइज और बड़ा करता था। बड़ा करते 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 सुरसा का मुंह जमीन से आसमान जितना बड़ा खुल गया, और हनुमान का साइज भी जमीन से आसमान जितना बड़ा हो गया। कंपटीशन था, अब ना वो हारे ना वो हारे, दोनों कंपटीशन में लगे हुए थे। मैक्सिमम साइज तक पहुंच गए। अचानक हनुमान को एक ट्रिक आया याद में, उसने अपना साइज सडनली एक छोटी मक्खी जितना कर दिया, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा हो गया मक्खी साइज। और सुरसा का तो मुंह इतना बड़ा खुला हुआ था, उसका सारा पेट दिखाई दे रहा था गुफा जैसा, तो मक्खी की तरह घूम करके पेट से बाहर आ गया वापस, और नॉर्मल साइज में आकर के कहता है, लो माँ मैं तुम्हारे पेट से चक्कर लगा आया, अब तो तुम संतुष्ट हो। फिर कहते वो सुरसा देवी के रूप में आई और उसने आकर के वरदान दिया कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में तुम सफल हो जाओगे। अब ये सुरसा कौन है? हमारी इच्छाएं, स्थूल रूप की इच्छाएं और कामनाएं, इनको जितना पूरा करने के लिए अपना साइज बढ़ाओगे, साइज बढ़ाओगे यानी जोर लगाओगे, धन का जोर, अपने स्थूल विशेषताओं का जोर, ताकि इज्जत मिल जाए, ताकि जीभ का स्वाद पूरा हो जाए, ताकि हम किसी को प्रभाव डाल सके, बाहरी इच्छाएं, उसको जितना पूरा करने का जोर लगाते हैं, कभी भी वो पूरी नहीं होती है। वो और भड़कती जाती है, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाती है। और फिर अगर उनको पूरा करना है तो सूक्ष्म रूप में जाना होगा, देह से न्यारा। देह से न्यारापन ही सर्व प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त करने की ताकत रखता है। वरना दैहिक रूप में आकर के हम कभी भी कामनाओं में संतुष्ट नहीं हो सकते। अनुभव किया होगा, जितना मर्जी स्वाद स्वाद खा लो, भले ब्रह्मा भोजन के रूप में खाओ या भोग के रूप में खाओ, आसक्ति वश खा रहे हैं तो कभी भी संतुष्टि होती नहीं है। अगर आसक्ति का त्याग करते देह से न्यारे होकर के बाबा का भोग इस देह को खिला रहे, सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तो उस बात में संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो इसलिए समर्पण माना इच्छाओं का समर्पण, मेरेपन का समर्पण। अब मेरेपन को भी समर्पण करने के लिए बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में हमें विधि बताई हुई है, एक मात्रा का अंतर कर दो बस। कौन सी एक मात्रा का अंतर कर दो? मेरे को कर दो तेरा। तन, तन को क्या बोलेंगे? तेरा। लौकिक भाषा में बोलते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। और अभी जब समर्पण कर दिया तो क्या बोलेंगे? हाथ भी तेरा, टांग भी तेरी, तन भी तेरा। अब इस तन को सुख मिला वो भी तेरा, अब इस तन को तकलीफ मिली, वो भी तेरी तेरी कर देंगे तो तकलीफ भी कम हो जाएगी। पीछे एक अव्यक्त मुरली आई थी लास्ट टू लास्ट संडे, जिसमें बाबा ने कहा था, समझो कोई बीमारी भी आती है तो ये ना कहो मैं बीमार हूँ, ये भी नहीं कि मेरा शरीर बीमार है, क्या कहेंगे? बाबा आपकी अमानत आप जानो, ये आपकी अमानत है आप जानो। हमने तो कई बार अभ्यास किया इस बात पर, समझो हमको कमर में दर्द होता है तो मैं बोलती हूँ बाबा आपकी कमर में दर्द मेरी नहीं है ना, आपकी है ना, आपको दिव बहुत एकदम लाइट हो जाते है, क्योंकि दर्द होता है देह को और आत्मा को दर्द होता है। जब देह को दर्द होता है तो आत्मा को क्या फील होता है? आत्मा को दुख होता है, दर्द आत्मा को नहीं होता है, आत्मा को दुख होता है। पर जब देह से न्यारापन होगा तो देह के दर्द का आत्मा को दुख नहीं होगा, दुख न होने से दर्द भी सेवा करेगा। डॉक्टर लोग हैरान हो जाएंगे कि और लोग आते हैं तकलीफ में तो हाय हाय करते हैं, ये कौन विशेष लोग है, ये दर्द भी होता है तो डॉक्टर को ज्ञान सुनाते है। कितने डॉक्टर्स की सेवा हो जाती है, डॉक्टर को कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। दादियां हॉस्पिटल में जाती है डॉक्टर्स की सेवा हो जाती है, और कोई लोग जाते हैं अज्ञानी लोग जाते हैं तो शोर मचा देते हैं, कितना दुख का वातावरण बना देते है। लेकिन ये अनुभूति कब होती है? जितना तन को तेरा किया हुआ उतना। तो इससे चाहिए वैराग, देह से पुरानी मिट्टी से वैराग, ये तन अब गया कि गया, बस जाने वाली चीज है, जिसके लिए बाबा इसको वैराग दिलाने के लिए याद दिलाया करते हैं, बच्चे ये पुरानी जुत्ती है, इससे क्या मोह रखना है, पुरानी जुत्ती अब गई कि गई। तो देह से न्यारापन ही हमारे समर्पण का आधार है। तो बेशक जो भी प्रवृत्ति वाले भी बैठे हो तो अंदर से ये पक्का सोच करके रहो कि हम बाबा के समर्पित बच्चे हैं, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ में मेरी इच्छाएं कामनाएं भी मेरी नहीं है। यहाँ तक बाबा कहते कई बच्चों को अपने पुराने संस्कारों से लगाव हो जाता है विकार है कमजोरियां, और बच्चे कहते हैं बाबा हम छोड़ने चाहते हैं, फिर आ जाता है, हम नहीं चाहते है गुस्सा करे। चलो गुस्सा छूट गया तो रोब डालने की आदत रह जाती है, पर रोब डालना बार बार आ जाता है, मोह है, हम नहीं मोह में रहना चाहते है, पर हम बार बार छोड़ते है, फिर आ जाता है। तो बाबा ने इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई पालतू जानवर होता है ना, किसी का पालतू जानवर तो छोड़ो, एक चूहा ही आपके घर में रह जाए एक महीना 15 दिन और फिर आप उसको पिंजरे में डाल करके घर के बाहर छोड़ दो तो क्या होगा? पड़ोसियों के घर में जाएगा, किसी और घर में जाएगा, हाँ वो आपके यहाँ का अन्न खाया उसने तो आपके यहाँ ही आएगा। बिल्ली को कहीं भी छोड़ करके आ जाओ वापस उसी घर में आएगी, दूसरे गांव से भी आ जाती, गाय भी, गाय भैंस भी है जी, बाबा के टाइम दूसरे गांव से भी गाय वापस आ गई थी, छोड़ के आ गए तो भी ढूंढती 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 वापस आ जाएगी। कहते एक गांव में अगर गाय भैंस चराने के लिए, सब की गाय भैंस चराने के लिए एक ले जाए और चरा करके जब वापस आते हैं तो बस गांव में छोड़ दे, हर एक अपने घर में जाएगी। तो ऐसे ही ये जो हमारे पुराने संस्कार है ना, ये हमारे पालतू हो गए, इनको हमने बहुत प्यार से पाला है कई जन्मों, अब हम इनको छोड़ने भी चाहते हैं ना तो फिर घूम फिर के वापस आ जाते हैं। हम प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा की झोपड़ी में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें लिख भी देते हैं, बाबा आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करना, बाबा आज के बाद कभी अमृत वेला नहीं सोना, बाबा आज के बाद ये वाली चीज जो हेल्थ को खराब करती है नहीं खानी है, ये छोड़ दी। फिर लिख तो देते, फिर क्या होता है? तो बाबा कहती है कि वो संस्कार को आपने छोड़ा, छोड़ा जरूर लेकिन जलाया नहीं, मारा नहीं, भस्म नहीं किया, तो वो वापिस आ जाता है क्योंकि जिंदा है ना अभी। सिर्फ आपने संकल्प किया कि छोड़ दिया, और जलाया जाता है जब अपनी ओरिजिनल नेचर को याद किया जाए, रिप्लेसमेंट ओरिजिनल नेचर, आत्मा की पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सब शक्तियां जब जितना जागृत होती हैं, तो ये जो पुराने संस्कार हैं ये जल जाते हैं। जिसके लिए आज भट्टी में स्वमान हमने लिया था, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं पिछले 3-4 सालों से इस पर विशेष अभ्यास कर रही हूँ। सतो प्रधान माना मुझ आत्मा के अंदर 7 मूल गुण समाये, 7 बेसिक एनर्जीज जो आत्मा के अंदर समाई है, बजाय इसके कि हम विकारों को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें, उसके बजाय अपने आत्मा के अंदर के मूल गुणों को जागृत करने का पुरुषार्थ करें, तो विकार, पुराने संस्कार तो अपने आप स्थान बदल लेंगे। क्योंकि आत्मा एक कंटेनर की तरह, एक पात्र की तरह, पात्र वही है जिसके अंदर वो 7 मूल गुण विराजमान थे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, और वो जैसे जैसे दबते गए, मर्ज होते गए, वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, आलस्य, नफरत, ये सब बातों ने स्थान ले लिया। अब हम अगर जोर लगाते हैं कि मैं ये वाली आदत छोड़ूं, ये वाली कमजोरी छोड़ूं, वो मुड़ मुड़ करके वापस आ जाती है। छोड़ू वाला पुरुषार्थ नहीं करना, छोड़ू के बजाय मैं शांति बढ़ाऊं और शांत और संतुष्ट और धैर्यवान और क्षमाशील और सहनशील, जो चीजें क्रोध के एंटीडॉट है, जो गुण प्रकट हो जाए और क्रोध चला जाए। क्रोध कैसे आता है? सहनशीलता का अभाव है, धीरज का अभाव है, शांति का, संतुष्टता का, क्षमा का अभाव है। ये गुण धारण करूं तो क्रोध भाग जाए, और उस सारे गुणों को मिला करके आत्मा के अंदर एक एनर्जी है जिसको शांति कहते हैं। तो बहुत गहन अभ्यास करूं मैं शांत आत्मा। शांत मींस मन ज्यादा बोलता नहीं है, मन चुप चुप भी है, हल्का भी है, संतुष्ट भी है, पा लिया जो पाना था, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता है। बार बार इस मन को दिन में कई बार अभ्यास करना होगा, जो भी बोल रहा है उसको बोलो चुप करो, 1 मिनट आत्मा हो जाओ, शांति की किरणें फैलाओ, चलो शांति धाम, देखो बाबा को, बाबा की किरणें अंदर समाओ, समाते रहो, समाते रहो, शांति की किरणें फैल रही हैं। टिक टिक करके गहरा अभ्यास क्रोध करने की इच्छाओं को मार देगा। वो जो पालतू है ना, क्रोध, इरिटेशन, निराशा, उदासी, थकावट, ये सारा शांति का अभाव है। मन शांत हो जाए, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, वो वाली साइलेंस, सिर्फ बोर वाली साइलेंस नहीं कि आपस में बात नहीं करना, वो तो जहां जितना जरूरी है उतना करना है, लेकिन अपने को बार बार चेक करना, पूछना, तुझे चाहिए क्या इस दुनिया से? तुम मर गए, दे छोड़ना है, घर जाना है, स्वर्ग के खजाने मिल रहे हैं तुझे, तो उस शांत स्वरूप में टिकना है, बार बार आत्मा के मूल गुण को सरफेस पर लाना है। कोई आता है, अपनी पसंद की बात नहीं बोलता है, अपने पसंद का काम नहीं होता है, शांत। मैंने रिएक्ट भी करना है शांति से, सामने वाले को समझाना भी है शांति से, उसने गलती किया डांटने की भी जरूरत है, पर पहले शांति, शांति से। उस शांति के गुण को बार 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 बहुत सारा यूज करूं, बहुत सारा अंदर प्रकट करूं। एक दिन में 15 बार से भी ज्यादा बजता है, 1 मिनट का अभ्यास शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। बार बार सच में ईमानदारी से अभ्यास करूं। अभी तो आप लोग मधुबन में, मधुबन में तो कितनी बार बजता है, घरों में तो किसी के बजता होगा, नहीं बजता होगा, फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, बजा सकते हैं, चलो यहाँ तो बजता है। उतनी बार ईमानदारी से रुको, जरूर कुछ भी कर रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, आत्मा हो जाओ, शांति की किरणें लो, बाबा की किरणें आने दो, शीतलता फील करो, अंग अंग शीतल, और शीतल किरणें फैल रही हैं, ग्लोब तक जा रही है। तो जितना मूल गुण पर हम टिकेंगे ना, तो वो जो नकली संस्कार थे जो पाल लिए गए गलती से 2 युगों से, वो भाग जाएंगे। गलती से पाले हमने, कोई हमारे प्रिय थे नहीं, गलती से कोई शेर पाल ले, वे शेर कोई पालने की चीज तो नहीं है, पर गलती से पाल ले तो क्या होगा, पल तो गया, बड़ा होके क्या करेगा, जब तक बच्चा था ठीक था, अब शेर बड़ा हो गया और मनुष्यों के परिवार में रह रहा है, तो जान को तो खतरा है ना। सांप पाल लो, शेर पाल लो तो खा जाएगा, जान को मुसीबत है। तो ये विकार हमने 2 युगों से पाले हैं, पुराने संस्कार अब हमको खाने को आ गए, आत्मा की पवित्रता को खा रहे, आत्मा के सुख और आनंद को खा रहे, सारे संसार की सुख शांति को खा रहे। पालतू है पर हिंसक है, विनाशकारी है, हमारी ओरिजिनल एनर्जी को नाश करने वाले हैं। तो इसलिए प्रेम को बार बार प्रकट करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, नफरत नहीं कर सकती कोई से, वैर नहीं रख सकती, ईर्ष्या नहीं रख सकती, कोई से भी बदला नहीं ले सकती, सबके लिए क्षमा, सबके लिए दया, सबके लिए करुणा, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार के सागर की संतान हूँ, सबके लिए प्यार 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 मेरा धर्म है, मैंने प्यार की गंगा बहानी है, मैं प्रेम का अवतार हूँ इस धरती पर, मेरा जन्म सबको प्यार के सागर की तरह प्यार में डुबो करके उनके विकारों को समाप्त करना, एक प्रेम ही प्रकट कर लो, ट्रू डिवाइन लव, आत्मा का रूहानी प्रेम, नफरत समाप्त हो जाए, ईर्ष्या समाप्त हो जाए, आपस में अनबन रूठना, हट करना, जिद करना समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रेम में कुर्बानी होती है, प्रेम में सबके लिए देने की भावना होती है, प्रेम में दूसरे के लिए शुभकामनाएं होती है कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हारा भी भला हो, तुम भी सुख पाओ, प्रेम वाला सुख देता है। और सबसे बड़ी बात है, आत्मा का जो मूल गुण है सुख और आनंद, वो इस ब्राह्मण जीवन में बहुत एक्सपीरियंस करना है, बहुत ज्यादा, हर एक बात से सुख लेना है। बेसिक सुख है मेरा कौन, भगवान मेरा, मुझे कौन मिला है, जिसे दुनिया ढूंढती है उसने मुझे ढूंढा है, वो सुख और आनंद का सागर मुझे रोज मीठे बच्चे कह करके बुलाता है। तो उस बात का सुख लेते अंदर में ये बार बार अपने लिए लक्ष्य रखना चाहिए कि कोई भी बात सामने आएगी, मैंने उसमें से सुख ले लेना, आनंद ले लेना, बात चाहे दुख की हो, बात चाहे बहुत बड़ी समस्या हो, बीमारी हो, धन का नुकसान हो, कुछ भी सामने आए, मैंने उसमें हर्ष का अनुभव करना, खुशी का अनुभव करना। कैसे करना है? उसके नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। यहाँ तक बाबा ने एक मुरली में कहा था, समझो रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, तो भी मुख से निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, वाह 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 ड्रामा वाह, अच्छा होगा नहीं, ये तो डाउटफुल भाषा बोली, जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा तो कहाँ दिख रहा है, टांग टूट गई, हुआ तो बुरा है, लेकिन फिर भी उस बुरे में से भी अच्छा लगे, वाह 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 ड्रामा वाह, शुक्रिया बाबा, कोई पाप कट गया। अच्छा होगा तो एक इंतजार हो गया ना, वो तो शक हो गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अच्छा है उसमें से भी सुख का अनुभव करे। बाबा जी इसके लिए क्या करते थे, समझो कोई गाली देता है तो गाली को फूल और निंदक को भक्त समझो, निंदक निंदा कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है सब तरफ, आप अच्छे हो लेकिन आपके लिए उल्टा बोल रहा है, और गाली को फूल समझो, अरे वो गाली दे रहा है, बहुत गलत भाषा आपके लिए प्रयोग कर रहा है, आप समझो फूल चढ़ा रहा है। यहाँ तक बाबा ने बोला था कि समझो कोई कलंक लगा रहा है, तो जितने तुम बच्चों को कलंक लगेंगे उतनी बड़ी कलंगी मिलेगी, जितने कलंक लगेंगे उतने आपके ताज में हीरे ज्यादा जड़े जाएंगे। और कलंक किस नाम पर, हम ईश्वरीय राह पर हैं, लेकिन जिनके मन के नैन खुले नहीं उनको ये वाली ईश्वरीय धारणाएं और मर्यादाएं गुनाह लगती है, अपराध या पाप लगता है। बहुत लोग हमारे पवित्र बनने को बहुत निंदा करते हैं कि ये भाई बहन बना देते हैं, घर बार छुड़ा देते हैं, तो घरों को ही बर्बाद कर देते हैं, बहुत गलत मानते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाओ और खाना ना खाओ, कहते हैं तो बच्चों को शादी नहीं करने देते है, समाज को बिल्कुल हम शुरू शुरू ज्ञान में चले और विनाश विनाश की बात सुनाते थे, तो सारे बोलने लगे अरे ब्रह्मा कुमारी आ तो दुनिया का विनाश करके ही रहेंगी। दो मिनट साइलेंस करते एकाग्र होके बैठेंगे, प्रेम से बस दो घड़ी प्यार के सागर की, प्यार की किरणें अपने ऊपर उतरती अनुभव करेंगे। मेन पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, अंदर सुख बाबा से पूरा भरना है। तो जितने भी दिन आप मधुबन में हैं, हर बात से सुख लेते रहना, अपनी थकावट से भी सुख लेना, देह के दर्द से भी सुख लेना है, दर्द में भी आनंद का अनुभव हो, भूख में भी आनंद का अनुभव हो, अभाव किसी चीज का लगे उसमें भी वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, क्योंकि हमारे सारे दृश्य बदलने वाले हैं। थोड़ा त्याग है कहीं कहीं, वह राग जितना होगा त्याग के साथ साथ, उतना हर दृश्य सुख और आनंद का अनुभव कराएगा। हमारा लंबे काल का अनुभव ये कहता है कि आत्मा के मूल सात गुणों पर हम रोज एकाग्र होकर अभ्यास करें तो किसी भी तरह के कड़े से कड़े संस्कार को परिवर्तन किया जा सकता है। बकायदा दिन में जितनी बार भी आप बैठते हैं, बाबा से ये सातों ऊर्जाएं जरूर लो, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, एक एक करके सब तरह की किरणें लेते, अंदर समाते, फिर कर्म करते, कभी शांति की गहराई में जाओ, कभी सुख की गहराई में जाओ, कभी आनंद की गहराई में, कभी पवित्रता की गहराई में, कभी सर्वशक्तिमान की शक्तियों के सूर्य के नीचे में शक्तियों का छोटा सा सूर्य किरणें फैला रहा हूँ। तो जितना ये अंदर समाते जाते हैं, सब तरह के पुराने संस्कार, किसी भी विकार के बाल बच्चे, उनको नष्ट किया जा सकता है। ओम शांति।